સુધી જનો દેવી હું કઠોપનિષદ કી આજ 11મી શ્રૃંખલા હૈ હમને અબ તક સુનતે આ રહે હૈ આચાર્ય મૃત્યુ ઓર નચિકેતા કા સંવાદ જિસ તત્વ કો બતાને કે લિયે આચાર્ય મૃત્યુ જા રહે હૈ ઉસસે પહેલે કુછ વો ભૂમિકા કુછ ઇન્ટ્રોડક્શન બતાના ચાહતે હૈ પિછલી બાર ભી હમને કાફી ચર્ચાએં સુની થી દો તરહ કે જ્ઞાન હૈ શ્રેય ઓર પ્રેય દો તરહ કે માર્ગ હૈ એક અવિદ્યા ઓર વિદ્યા એક સંસાર કી ઓર એક અંદર કી ઓર ઉસમે જો શ્રેય માર્ગ હૈ જો અંદર કી યાત્રા હૈ જો અપને આપ કો જાનને કી તરીકા હૈ उसी के बारे में आगे बढ़ते हैं। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः श्रण्वन्तोऽपि बहवो यं न विदुः आश्चर्योऽस्य वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। बहुत सारे लोगों को ये बातें सुनने को नहीं मिलता है, जो सुनते हैं बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है, जिन लोगों को समझ में आता है उनमें बहुत सारे लोगों को बताना नहीं आता है। इसको बताने वाला और उसको समझने वाले बड़े दुर्लभ होते हैं, बड़े रेयर होते हैं। कुछ लोग ज्ञान का मतलब पढ़ने को समझते हैं, रटने को समझते हैं या सुनने को समझते हैं। आपने दो दर्जने किताबें पढ़ ली तो लगता है कि मैं बहुत कुछ जान लिया, मैंने काफी सारे लेक्चर सुन लिया लगता है कि मैं बहुत कुछ जान लिया, दर्जनों दो दर्जने किताबें रट ली और लगता है कि मैं बहुत कुछ जान लिया। जब तक हमारे माइंड सेट, हमारी मानसिकता ये रहेगी कि पढ़ना रटना या सुनना ज्ञान है, तब तक हम अज्ञानी बने रहते हैं। क्योंकि ज्ञान का अर्थ होता है टू रियलाइज, किसी चीज को रियलाइज करना, अनुभव करना। आग गरम है अगर ऐसा आपने सुना है वो ज्ञान नहीं है, वो सूचना है, वो इंफॉर्मेशन है। हमारी जो प्रॉब्लम है हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंशिएट करना नहीं जान पाते हैं। सच क्या है अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको सैकड़ों शास्त्रों में सच के बारे में क्या क्या लिखा है वो सुना दूंगा। हो सकता है एक हफ्ते तक मैं आपको सुनाता रहूं सच क्या है झूठ क्या है, पर सही मायने में मैं सच को नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं दिन में 100 बार झूठ बोलता हूं। मतलब मुझे सच के बारे में पता है, सच नहीं पता। सच को बोलने में मेरा दिल कैसा रहता है, मेरा शरीर कैसा रहता है, मेरी मानसिकता कैसी रहती है, उसका रिएक्शन मेरे साथ क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं झूठ बोलता हूं। पर मैं आपको घंटों महीनों लेक्चर दे सकता हूं सच क्या होता है। तो इसका मतलब सच का ज्ञान मुझे नहीं, सच के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है। जिन लोगों को यह दावा है कि हम ईश्वर को भगवान को जानते हैं, वो ईश्वर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, पढ़ रखा है, किताबें रट रखी हैं। जब आपको कभी लगता है कि यह आदमी बड़ा ज्ञानी है, तो ज्ञानी का मतलब आपके लिए सिर्फ इतना है कि यह आदमी बहुत किताबें पढ़ रखा है, बहुत सारे सूचनाएं संग्रह कर रखा है, बहुत सारे कोटेशंस रट रखा है, बस इतना। हमारी समस्या है कि हम ज्ञानी उसको समझते हैं जो किताबी बातें ज्यादा करता है। इसीलिए आप बड़े इंटरेस्टिंग बात देखेंगे, भारत के लोग बड़े मेधावी होते हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, बड़े ब्रिलियंट होते हैं, समझदार होते हैं, उनमें ज्ञान बहुत होता है, बुद्धि बहुत होती है। पर आप देखेंगे पिछले 100 साल में और खास करके आजाद भारत में, भारत में से एक भी आदमी ना साइंस में, ना लिटरेचर में, ना आर्ट में, ना किसी भी फील्ड में, वो दुनिया के ना उस कोई नोबेल जीतने वाला, ना और कोई अवार्ड जीतने वाला, ना कोई ओरिजिनलिटी दुनिया को ओरिजिनल ज्ञान देने वाला मुश्किल से मिलेगा भारत में। इसका अर्थ ये नहीं कि उनमें उनमें दिमाग नहीं है, इसका अर्थ नहीं कि उनमें मेधा नहीं है, प्रतिभा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, हम रटाने पर जोर देते हैं, रटने पर जोर देते हैं। ईस्ट और वेस्ट में जो बेसिक अंतर यही है, जो वेस्ट का कल्चर है जो शास्त्रों को कम मानता है, जो रियलाइजेशन को, एक्सपेरिमेंट को जिंदगी पे उतारने को मानता है, इसीलिए छोटे छोटे देश आपको मिलेंगे जिनकी जनसंख्या भारत के छोटे छोटे शहर से भी कम है। पूरे देश की जनसंख्या भारत के एक छोटे से शहर से भी कम है, और ऐसा देश थोक में नोबेल ले जाते हैं और दुनिया भर के अवार्ड ले जाते हैं, दुनिया भर के वो ओस्कर ले जाते हैं, और हम इतने बड़े देश में इतने फिल्में बनते हैं, इतने साइंटिस्ट होते हैं, इतने प्रोफेसर होते हैं, इतने इंजीनियर होते हैं, पर हम कोई ओरिजिनल चीज दे नहीं पाते हैं, क्योंकि हम कभी एक्सपेरिमेंट पर, ओरिजिनल चीजों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वही ज्ञान है। जो दूसरों ने कहा उसको रट लेना, उसको एजिटेट सुना देना, इसमें हम ज्ञान समझते हैं। मैं क्या मानता हूं वो मायने नहीं रखता है। तो अब आप समझे कि ज्ञान और सूचना, इंफॉर्मेशन और नॉलेज दो अलग अलग चीजें हैं। जिनको आप ज्ञानी समझते हैं वो वेद की भाषा में वो सूचना, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाले हैं। जिसको आप एक बड़ी सुंदर कहानी सुनी होगी तोते की, कभी किसी शहर में, किसी बाजार में कुछ लोग तोते पकड़ के बेच देते थे। एक फकीर आदमी, संत आदमी बाजार में गया, देखा ये तोतों को पिंजरे में बांध के रखा जाता है और उनको बेच दिया जाता है। उसको बड़ा बुरा लगा, सोचा ये गलत बात है, जानवरों पर जुर्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। उसने पैसे देकर के सारे तोतों को खरीद लिया, अपना घर ले गया। सोचा मैं उनको ट्रेंड करूंगा, इनको प्रशिक्षित करूंगा, आगे वो कभी गलती से फंसे ही नहीं। तो उसने तोतों को सिखाया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। ये आप सुना होगा बचपन में ये बातें। ऐसा उसने तोतों को रटवाया, तोते रट लेते हैं। सालों रटाने के बाद आप तोते बोलने लायक हो गए, अब तोते बोलते हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। अच्छा आदमी को, वो जो फकीर आदमी को बड़ी खुशी हुई, मैंने तोतों को ज्ञानी बना दिया, अब ये कभी फंसेंगे नहीं। अब वो गया जंगल में, तोतों को खोल करके पिंजरे से उड़ा दिया। तोते अब उड़ते हुए गए, गाना गाने गाने के साथ साथ कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। गाना गाते हुए उड़ते उड़ते गए, ऊपर से देखा एक जगह दाना डले हुए थे। अब वो दाना चुगने के लिए नीचे आ रहे हैं गाना गाने के साथ, दाना चुगने आ रहे हैं गाना गाने के साथ कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं फंसना नहीं। दाना चुगने नीचे उतरे, जाल में फंसे, अब जाल में फंस के भी तोते गा रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं फंसना नहीं। शिकारी परेशान हुआ देख करके, ये बड़े समझदार चालाक तोते हैं, अब ये गा रहे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं फंसना नहीं, अब मेरा क्या होगा। पर जब ध्यान से देखा कि तोते फंस चुके थे, अब वो तोतों को बटोरने लगा, एक एक करके पिंजरे में डालने लगा, बड़ा खुश हुआ। मार्केट में अब वो गया, अब उसके पास दो तरह के तोते हैं, एक तोते का रेट 50 रुपए है, एक तोते का रेट 500 रुपए है। लोगों ने पूछा क्या फर्क है, बोले ये अनपढ़ तोता है, ये पढ़ा लिखा तोता है। पढ़ा लिखा तोता कैसे, तो तोते ने गा करके ज्ञान की बातें बताया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं फंसना नहीं। उपनिषद की भाषा में जिनको हम ज्ञानी बोलते हैं वो तोते होते हैं, उनका रेट ज्यादा होता है। बनिस्बत जो कम पढ़ा लिखा है, जिसको 50 रुपए की सैलरी मिलता है, पढ़ने लिखने के बाद 5 लाख की सैलरी मिलेगी। पर जमीनी फर्क कुछ नहीं होता है, बेसिक डिफरेंसेस कुछ भी नहीं है। जितना बेवकूफ हम बनते हैं उतना वो भी बनते हैं, जितने दुनिया के बारे में कॉम नॉलेज हमें है उतना उनको भी है। जितना एक साइंटिस्ट सुपरस्टिशियस या ब्लाइंड फेथ में भरोसा करता है उतना एक अनपढ़ आदमी भी भरोसा करता है। बेसिक अंतर क्या है कि मैं एक पढ़ा लिखा तोता हूं, मेरे बगल वाला एक अनपढ़ तोता है, इससे मेरा रेट बढ़ जाता है और अनपढ़ तोते का रेट घट जाता है। अगर यही ज्ञान है इसे रेट बढ़ेगा पर अंदर कुछ बदलता नहीं है, इसलिए आप कभी नहीं देखेंगे पढ़े लिखे और गरीबों के बीच में सिर्फ पैसों के अंतर के अलावा और कोई अंतर नहीं दिखता। इसीलिए शास्त्र कहता है अगर कभी किसी को लगे कि मैं उस अध्यात्म तत्व को जानता हूं, वो कहता है कि बड़ा दुर्लभ है। अगर तुम सिर्फ मानते हो ये सुनने जानने और पढ़ने को कंठस्थ करने को ज्ञान मानते हो, तो वो ज्ञान सिर्फ तोते की रटंत जैसा है, उसमें ज्ञान का कोई मतलब नहीं। गुलाब खुशबूदार होता है, गुलाब में फ्रेग्रेंस ये खुशबू है, ये किताब पढ़ने से पता नहीं चलता, ये सुनने से पता नहीं चलता, जब तक आप गुलाब को सूंघो नहीं, जब तक गुलाब के पास से गुजरो नहीं। इसी तरह खुद को जानने के लिए जब तक मैंने खुद को जाना नहीं, खुद को एक्सपेरिमेंट नहीं किया, खुद को रियलाइज नहीं किया, तब तक किताबें पढ़ना बेकार है। इसीलिए कहा दुनिया में बहुत बिरले लोग होते हैं जो खुद को जानते हैं। खुद के बारे में जानने वाले आपको करोड़ों मिलेंगे, खुद के बारे में बताने वाले करोड़ों मिलेंगे, खुद को जानने वाले बड़े कम मिलेंगे। इसलिए मंत्र कहता है कि सुनने के लिए भी बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं, और जो समझते हैं उनमें बड़े कम लोग होते हैं जो इसको बता पाए। इसी को कृष्ण गीता में लिखते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतते सिद्धये। हजारों लोगों में कोई एक आधा होता है जो खुद को प्यूरिफाई करने के लिए कोशिश करता है, उन कोशिश करने वालों में से सक्सेस पाने वाले, सक्सीड होने वाले, सफलता पाने वाले लोग बिरले होते हैं। यततामपि अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। और वो सिद्ध लोगों में से कोई एक आधा होता है जो खुद को जान पाता है। इसीलिए नहीं कि मुश्किल है, मतलब आपको लगता है अगर रास्ता बड़ा मुश्किल है तभी काम लोगों को मिल पाता है, नहीं, इसीलिए कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है, हमारी वासनाएं नहीं है, हमारी कामनाएं नहीं होती है, इसीलिए हमें वो नहीं मिलता। ध्यान दीजिएगा, सूरज रोज सुबह उगता है और करोड़ों लोगों के सामने से सूरज उगता है। कितने लोग हैं जो सुबह उगते सूरज को देख पाते हैं? किसको ऑफिस जाना होता है, किसी को एक्सरसाइज करना होता है, किसी को खाना बनाना होता है, किसी को और कुछ करना होता है, सूरज रोज उगता है। पर बहुत कम लोग होते हैं जो सूरज को उगते सूरज को देख पाते हैं, और जो सूरज को देखते हैं उनमें बहुत कम लोग होते हैं जो उगते सूरज को देख करके उसकी खूबसूरती पर मरते हैं, उसकी सौंदर्य पर गदगद हो जाते हैं। एक साइंटिस्ट जब सूरज को देखता है उसको सिर्फ उसमें वो गैस दिखता है जिसके एक्सप्लोजेशन से वो लाइट होता है। कोई मजदूर देखता है, कोई ऑफिस जाने वाला देखता है, उसको दिखता है अच्छा सूरज यहां तक आ गया, भागना है, ऑफिस लेट हो रहा है, बा आज गर्मी ज्यादा होगी या धूप ज्यादा होगा तो काम कैसे करूंगा। हर आदमी सूरज को देखता है पर हर किसी को उगते सूरज का जो खूबसूरती है नहीं मिलता। कोई एक आधा कवि है, सहृदय है, दिल वाला है, जिसको उगते सूरज का जो चार्म है, जो उसकी खूबसूरती है, जो उसका आनंद ले पाता है। इसका अर्थ नहीं कि सूरज का उगना बड़ा मुश्किल होता है, सालों में एक आधा बार उगता है, ऐसा कुछ नहीं, रोज उगता है, पर उसका आनंद हम कभी कभी ले पाते हैं। इसी तरह जीवन में हर चीज में है, जो चीजें हम नहीं पा पाते हैं, बा कम लोगों को मिलता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो बड़ा मुश्किल है, बा वो रेयर है, ऐसा कुछ नहीं। लोग बड़े रेयर होते हैं जो उसको सचमुच उसके आनंद लेना चाहते हैं, इसीलिए हमें वो नहीं मिलता है। इसी तरह मैं खुद 100 साल तक जीता हूं पर मेरी प्रॉब्लम है कि मैं खुद को ठीक से नहीं जानता हूं। खुद की अंदर की जानना तो दूर की बात है, मैं खुद का जो बिल्कुल ग्रॉस लेवल है, जो ठोस लेवल है, उसको नहीं जानता हूं। मैं कितना गुस्सेल हूं, मैं कितना शांत हूं, मेरी कितनी कैपेबिलिटी है, मेरा सामर्थ्य कितना है या नहीं है। ज्यादातर लोग या तो अपने कैपेबिलिटी को, अपने सामर्थ्य को कम आंकते हैं या ज्यादा आंकते हैं, या तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं या थोड़ा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। सही, अब मैं कितना कर सकता हूं ये जानने वाले बड़े रेयर होते हैं, और जो जानता है वो दुनिया में सफल होता है। जो भी सफल आदमी मिलेंगे इसका अर्थ नहीं कि वो पूरा जानता है, हो सकता है वो उससे ज्यादा सफल हो। हम अपना जो बेस, जो ऊपरी ऊपरी चीजें हैं उसको भी ठीक से नहीं जानते, अंदर की तो दूर की बात है, पर ये जरूर है हम दूसरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हम दूसरों के सामर्थ्य को जानते हैं। तभी तो कंपनियों में जो ये ह्यूमन रिसोर्स में काम करने वाले लोग होते हैं वो देखकर समझ सकते हैं कि ये कितना काम का है कितना नहीं है, पर वो जो दूसरे ह्यूमन रिसोर्स को ढूंढता है उसका रिसोर्स वो खुद नहीं ढूंढ पाता है कि मेरा रिसोर्स कितना है। ये हमारी समझ, इसका अर्थ नहीं कि मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। मेरा सवाल है कि मैं अपने बारे में कभी सजग नहीं हुआ, कभी सचेत नहीं हुआ, कभी मेरे अंदर वो अवेयरनेस नहीं आया, कभी वो अवेकनेस नहीं आया कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, कितना हूं। जब मुझे अपनी बाहरी दुनिया का पता नहीं, बाहरी शरीर का पता नहीं, अंदर की जानकारी तो बहुत कम लोगों को होता है। अगला मंत्र है, न नरेण वरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिंत्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अनियान्य तर्कमणो प्रमाणात्। ये जो सेल्फ है, जो मैं, मेरी जो सत्ता है, उसको अगर कोई कम जानने वाला व्यक्ति आम आदमी से सुना जाए तो तो वो ठीक से जाना नहीं जा सकता है। उसको जानने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। जो खुद के जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाया वो दूसरों को क्या हासिल कराएगा। टीचर को अपना सब्जेक्ट अगर क्लियर नहीं है वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। अगर बच्चे किसी ऐसे टीचर के पास चले जाएं जिसको खुद अपने सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं, अगर है तो बड़ा थोड़ा है, तो वो बच्चे भी जिंदगी भर के लिए नालायक बन जाते हैं। आप ऐसे एक बॉस के नीचे काम करते हैं जिसको खुद मैनेजमेंट पता नहीं, तो आप भी कभी तरक्की नहीं कर सकते हो। आप ऐसे एक साइंटिस्ट के नीचे रिसर्च करते हैं जिसको खुद के अपने नॉलेज ठीक से पता नहीं, तो आप कभी साइंटिस्ट नहीं बन सकते हो अगर ऐसे साइंटिस्ट के नीचे काम करते हो। पर प्रॉब्लम है कि दुनिया में हर सब्जेक्ट में इस तरह के लोग ज्यादा होते हैं जिनको अपने सब्जेक्ट में गहराई में ज्ञान हो और वो गाइड बने। नकली गाइड हर सब्जेक्ट में ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा नहीं तो ज्यादा अवेलेबल होते हैं और आसानी से फंसा जा सकता है। और धर्म में अध्यात्म में तो ये बहुत ज्यादा होता है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अध्यात्म का रिजल्ट हमेशा मरने के बाद होता है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है क्या होने वाला है, तो गुरु जो बोलता है उसमें हम फंसते जाते हैं। बाकी टीचर हो, साइंटिस्ट हो, गाइड हो, हमें पता तो होता है 2-4 साल में रिजल्ट दिखेगा, नहीं तो मैं बदल डालूंगा, क्योंकि इसमें रिजल्ट देखने लायक होता नहीं, इसलिए हम फंस जाते हैं। इसको सिर्फ जो अनुभवी व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में इसको उतारा है, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ करके अगर प्राप्त किया तभी जाना जा सकता। बोले क्यों? क्योंकि वे आर्गुमेंट से परे है, ये लॉजिक से परे है। क्योंकि जिसको भी आप लॉजिक से सही साबित कर सकते हो उसी चीज को लॉजिक से गलत साबित किया जा सकता है। आर्गुमेंट एक ऐसा चीज है, एक लेवल तक आप उसमें सच ढूंढ सकते हो, पर कभी भी प्योर ट्रूथ ढूंढने के लिए आर्गुमेंटेशन या तर्क या बहस या डिबेट बिल्कुल परफेक्ट मीन नहीं होता, साधन नहीं होता है। और कभी आप लॉजिक पढ़ेंगे, तर्कशास्त्र जिसको कहते हैं, या कोर्ट में वकीलों का बहस देखेंगे, तो उस लॉजिक से आप समझ जाएंगे कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आप खुद को भी लॉजिक से साबित कर दोगे कि आप नहीं हो। और शंकर ने लॉजिक से साबित किया कि यह दुनिया झूठ है। आपको कभी लगता है यह दुनिया झूठ है? आप झूठ हो, आपके मां बाप झूठ है, आपके पेड़ पौधे झूठ है, आप जो कमाते हो झूठ है। पर आप अगर शंकर की लॉजिक्स पढ़ोगे, उनका फिलोसॉफी को, आप यकीन होगा सचमुच दुनिया झूठ है। लॉजिकली वो प्रूफ करता है कि संसार नहीं है। पर रामानुज आता है, वो लॉजिकली प्रूफ करता है कि शंकर ने जो कहा वो गलत है। जब आप शंकर को पढ़ोगे आपको लगेगा दुनिया सचमुच नहीं है, ये सब झूठ है। रामानुज को पढ़ोगे लगोगे नहीं, प्योर संसार है, शंकराचार्य गलत है। क्योंकि लॉजिक से सब कुछ काटा जा सकता है। और मैं खुद को भी झुटला सकता हूं, इतने लॉजिक होंगे। मैं क्या हूं, मेरी सत्ता है, ये लॉजिक से परे है। ये अनुभव का विषय है, ये रियलाइजेशन का विषय है। गुलाब का खुशबू कैसा है, वो चमेली का खुशबू नहीं है, उसमें किसी दूसरे मंदार का खुशबू नहीं है। आप ये लॉजिक से प्रूफ नहीं कर सकते हो कि गुलाब का खुशबू चमेली के खुशबू से अलग है। ये आर्गुमेंट से प्रूफ नहीं हो सकता, ये लॉजिक से प्रूफ नहीं हो सकता। ये सिर्फ प्रूफ होगा जब आप उसको सूंघोगे, आपको पता चलेगा अच्छा ये है गुलाब का खुशबू और ये है चमेली का खुशबू। दीज आर द डिफरेंसेस, ये अलग है। आप इसको बहस करके नहीं साबित कर सकते हो कि गुलाब की खुशबू और चमेली की खुशबू में अंतर क्या है। अब ये नहीं साबित कर सकते हो कि रसगुल्ले की मिठाई और जिलेबी की मिठाई में अंतर क्या है। आप डिबेट से नहीं कर सकते, लॉजिक से नहीं कर सकते हो, आपको उसके लिए रियलाइज करना पड़ेगा, चखना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा अच्छा रसगुल्ले का भी मीठा है, जिलेबी का स्वाद भी मीठा है, पर दोनों मिठास में अंतर है। वो अंतर सिर्फ आप अनुभव कर पाओगे जब आप चखोगे, खाओगे। कोई किताब, कोई लॉजिक, कोई आर्गुमेंट, कोई डिबेट ये प्रूफ नहीं कर सकता, एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं कर सकता, आपको ये बता नहीं सकता कि दोनों में क्या अंतर है। आपको कभी ये ज्ञान नहीं हो पाएगा सिवाय चखने का। आत्मा मतलब सेल्फ, खुद के रियलाइजेशन से पता लगता है, ये तर्कों से परे है। इसीलिए आपको एक उस टाइप का गुरु की जरूरत होती है, उस तरह के ज्ञानी की जरूरत होती है जो उसको जानता हो। और उसका लक्षण क्या है? जिसमें समानता का भाव आ चुका हो, जिसमें दूसरों में भेद करना बंद कर दिया हो। ज्ञानी का डेफिनेशन है, खुद को जानने वाले का डिस्क्रिप्शन है, उसका मार्क या उसका जो सिंबल है, जो पहचान है, कि जो डिफरेंशिएट, वो अलग अलग करना जिसके अंदर की भावना खत्म हो चुकी है, जो ये नहीं समझ पा सकता कि ये अलग है मैं अलग हूं, जिसके लिए दुनिया के हर चीज अपने जैसा है। इसको यजुर्वेद या ईशावास्य उपनिषद ऐसे इंटरप्रेट करता है आत्मज्ञानी को, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुभवति अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न जुगोप्सते। जो सब में अपने को देखता है, अपने में सबको देखता है, फिर वो ना किसी से नफरत कर सकता है, ना प्यार कर सकता है। ये आत्मज्ञानी का लक्षण बताया, जो सबको बराबर दृष्टि से देखे। ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसमें समानता आ चुकी है, जिसमें सभीयों में वो एक तत्व दिखने की शक्ति आ चुका है, ऐसे व्यक्ति के पास बैठ करके अगर हम प्रैक्टिस करें तो मुझे खुद का ज्ञान हो सकता है, नहीं तो ये बड़ा मुश्किल काम है। पर हमारी समस्या है कि हमें जिस तरह के गुरु मिलते हैं, हम उनको ज्यादा एग्जामिन नहीं करते, परीक्षण नहीं करते। जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु बड़ा जरूरी होता है। किसी भी मामले में आप अपने लाइफ में बढ़ें, आप अपने बिजनेस में बढ़ें, आप अपने प्रोफेशन में बढ़ना चाहें, आप स्पिरिचुअलिज्म में बढ़ना चाहें, आप किसी भी क्षेत्र में बढ़ना चाहें, आपको एक गुरु की जरूरत होता है। आप गाड़ी चलाएं, आपको एक गुरु की जरूरत होता है, टीचर की जरूरत होता है, गाइड की जरूरत होता है, जो आपको रास्ता बताता है। और सवाल है कि वो गुरु, वो टीचर ठीक होना चाहिए, जो ठीक ठीक जानता हो। दूसरा सवाल है जो हम लोग धोखा खा जाते हैं, टीचर या गुरु सीढ़ी होता है, गोल नहीं होता है, लक्ष्य नहीं होता है। खास करके आप देखेंगे हम लोगों में एक प्रवृत्ति है, जिसने हमें कोई ठीक ठाक ज्ञान दे दिया, हम उसी में चिपक जाते हैं। फिर मां बाप छोड़ के, घर परिवार छोड़ के गुरु का चेला बन के घूमते रहते हैं। मानो जिंदगी में मां की कोई भूमिका नहीं, बाप का कोई भूमिका नहीं रही। आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में जिन्होंने आपको पढ़ाया, उनका आपके लाइफ में कोई रोल नहीं, बाकी किसी का कोई रोल नहीं। ये जो 8 दिन 15 दिन प्रवचन करके आपको ध्यान प्राणायाम सिखा दिया, वही आपके जिंदगी में सब कुछ हो गया, चिपक के बैठ गए जिंदगी भर। गुरु जरूरी है, आप में से कोई अध्यात्म गुरु चुन रखा है, जरूरी है, पर गुरु सीढ़ी होती है। मुझे कोलकाता जानी है, मुझे यहां से कैलिफोर्निया जानी है, मैं ट्रेन पकड़ता हूं, बस पकड़ता हूं, कार पकड़ता हूं या हवाई जहाज पकड़ता हूं। मुझे पता चला कैलिफोर्निया पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाया जा सक पहुंचा जा सकता है या बस से जाया जा सकता है। मैंने बस पकड़ी, मैं अंदर सोचता रहा बस के अंदर कि बस कितनी काम की चीजें, कि बस नहीं होती तो मैं कभी कैलिफोर्निया नहीं पहुंच सकता, कि बस मेरी जिंदगी में कितना कितना उपकार किया। बस कैलिफोर्निया में पहुंच गया, अब मैं तैयार नहीं हूं उतरने के लिए, मैं तैयार नहीं हूं। क्यों? कि बस ने मेरे इतना उपकार किया, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं बस के साथ ही रहूंगा। बस वापस ह्यूस्टन आ गई, मैं भी आ गया, अब मैं बस के अंदर रहूंगा। ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे? पागल है, बिल्कुल ठेठ पागल है। तू ना कैलिफोर्निया उतरता है ना ह्यूस्टन उतरता है, क्योंकि कैलिफोर्निया और ह्यूस्टन आने जाने के लिए बस जरूरी है, तू बस में चिपक गया। जो लोग गुरुओं से चिपक जाते हैं वो ठेठ पागल उसी तरह के होते हैं जैसे ये आदमी बस से उतरने का नाम नहीं लेता है। गुरु बस से जो आपको कहीं तक पहुंचाएगा, अपर पहुंचाएगा, तभी ना जब गुरु को छोड़ोगे। सीढ़ियों से छत पर जाया जाता है, पर सीढ़ी की आखिर स्टेप पर खड़ा होकर सोचोगे, क्योंकि सीढ़ी के कारण मैं छत पर चढ़ने लायक बना, मैं सीढ़ी को छोड़ नहीं सकता, तो जिंदगी में कभी छत पर पहुंच नहीं सकते हो। तुम जिंदगी में कभी नहीं कैलिफोर्निया पहुंच सकते हो जब बस में उतरोगे नहीं, जब तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो जब गुरु को छोड़ोगे नहीं। तुम कभी बच्चा नहीं बन सकते हो जब तक मां के गर्भ से निकलोगे नहीं। कहोगे क्या बात है, 9 महीने तक मेरी मां ने अपने गर्भ में मुझे रखा, पाला पोषा, इतना ज्यादा प्रोटेक्शन दिया पेट के अंदर, गर्भ के अंदर। ये नहीं होता तो मैं पैदा नहीं हो सकता, इसीलिए मां मैं निकलूंगा नहीं, मुझे यही रहने दो, मां भी रोएगी बच्चा भी रोएगा। आपको छोड़ना पड़ता है। क्योंकि हम गुरुओं के प्रति जो अंधा भक्ति रखते हैं, उसका परिणाम है कि दुनिया में खूब गुरु कुकर्मुत की तरफ फैल गए, जो सिर्फ भक्तों के उस भक्ति को कैश करना जानते हैं। मंत्र कहता है जीवन में हर मामले में आगे बढ़ने के लिए गुरु जरूरी है, सही गुरु जरूरी है, और सही गुरु को ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसको प्रणाम करके आगे बढ़ने की जरूरत है। अगला श्लोक देखते हैं मंत्र। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुविज्ञानाय प्रेष्ठ यान त्वमाप सत्य धृतिर्वतासी त्वाद्रं भूयान नचिकेत प्रष्टा। हे नचिकेता, ये ज्ञान बहस से, डिबेट से, आर्गुमेंट से नहीं पाया जा सकता, ना समझा जा सकता है। इसको समझने के लिए ऐसा एक गुरु की जरूरत है जो जिसके अंदर डिफरेंसेस खत्म हो चुका है। पर हे नचिकेता, खाली गुरु की बात नहीं है, मैं ये भी कहूंगा तुम्हारे जैसा शिष्य हमेशा मिलता रहे। अभी तो आप गुरु के बारे में सुना, बड़ी जरूरी होती है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी भी मामले में। पर खाली गुरु हो और शिष्य लायक ना हो, इसीलिए तैतरीय उपनिषद में आता है कि ज्ञान की प्रक्रिया क्या है। बोले आचार्य पूर्व रूपम अंतेवास्योत्तर रूपम ज्ञानम संधि प्रवचनम संधानम। ज्ञान दो चीजों के मिक्स होने से निकलता है, आचार्य और शिष्य, गुरु और शिष्य, क्लास में टीचर और स्टूडेंट। टीचर अच्छा हो, स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता, तो भी वो ज्ञान नहीं आएगा। स्टूडेंट्स पढ़ना चाहता हो टीचर ही नालायक हो तो भी ज्ञान नहीं आएगा। तो बोला ये दोनों दो लकड़ियां हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों को अगर रगड़ते हो तो आग निकलता है, चिंगारियां। चिंगारी तभी निकलेगी जो दो लकड़ियां हो, दो पत्थरें हो, दो को रगड़ोगे तभी। वो चिंगारी क्या है? वो ज्ञान है, वही तेज है। उनको रगड़ना क्या है? गुरु शिष्य का मिलना। तो इसलिए शिष्य का भी परफेक्शन चाहिए। जितना शिष्य ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ, जिज्ञासा के साथ बैठेगा उतना ज्ञान मिलेगा। और इतनी दिनों से जो हम कठोपनिषद सुन रहे हैं, हम नचिकेता का जो कैरेक्टर, जो चरित्र देखा, तो यकीन से हम कह सकते हैं कि ऐसा शिष्य तो बड़ा दुर्लभ है जो ज्ञान के अकड़ के बैठ जाए, ज्ञान के लिए हिलना ना दे, खाना पीना छुड़वा दे गुरु का, जो भूखा प्यासा गुरु को छुड़वा दे, ज्ञान दो फिर उठने दूंगा, कोई लालच नहीं कोई डर नहीं। तो यमराज कहता है कि तुम्हारे जैसा शिष्य मुझे बार बार मिलता रहे, मेरे जीवन में भी बड़ा जरूरी है कि मुझे कोई सही शिष्य मिले। जैसे तुम्हारे लिए मेरे जैसा गुरु मिलना जरूरी है, ऐसे मेरे लिए तुम्हारे जैसा शिष्य मिलना बड़ा जरूरी है। अगला श्लोक देखेंगे। तम दूरदशम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गौहरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वाधीरो हर्ष शोक जहाति। थोड़ा टॉपिक चेंज हुआ। हे नचिकेता, जब कोई ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी का अर्थ मेरे ख्याल से अब आप समझ गए, क्योंकि ज्ञानी कहते ही आप समझ जाते हैं या हम समझ जाते हैं, कोई पढ़ा लिखा आदमी। किताब पढ़ने लिखने वाला को ज्ञानी उपनिषद नहीं कहता है, रियलाइज करने वाले को ज्ञानी कहता है। सिर्फ अध्यात्म में नहीं, आपके लाइफ में भी, आप बिजनेस के सैकड़ों किताबें पढ़े हो पर जो बिजनेस के फील्ड में उतरते हैं तो फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो कुछ है ही नहीं। और ज्यादातर दुनिया में जो बड़े बड़े बिजनेस मैन है वो कोई बिजनेस स्कूल में पढ़ के नहीं आए हैं। ज्यादातर जो बिजनेस जो फैमिली के जो मालिक होते हैं, इंडस्ट्रीज के जो मालिक होते हैं, वो ज्यादातर ज्यादा पढ़े लिखे होते ही नहीं है। उनके नीचे जो सीईओ बनते हैं, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, वो सब पढ़े लिखे होते हैं, वही बिजनेस स्कूल में पढ़कर आते। बिजनेस करने के लिए स्कूल में पढ़ना जरूरी है, पर खुद रियलाइज, खुद एक्सपेरिमेंट करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। दुनिया में करोड़ों अरबों लोग साइंस पढ़ते हैं, पर गिने चुने होते हैं जो दुनिया को कुछ रोशनी दे जाते हैं। तो ज्ञानी हमेशा, मैं दोबारा रिपीट करूं, ज्ञानी का मतलब जिसने जाना है, इंफॉर्मेशन नहीं, जिसने नॉलेज पाया है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जब उस परमात्मा को, ईश्वर को, आत्मा को, सेल्फ को जानता है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक को जानो तो दूसरे को जानेंगे, इस पर आगे चर्चा करेंगे, तो हर्ष शोक जहाती, उसका दुख और शोक, सुख और दुख दोनों मिट जाता है। जिस दिन मैं अपने आप को जान जाऊंगा, मैं आत्मा हूं, चेतना हूं, शरीरों का बदलना मेरा कपड़ों के बदलने जैसा है, ये घर मेरे, ये शरीर जितने दिन तक है तब तक घर है, ये परिवार तब तक है जब तक मेरा शरीर है, ये दुनिया में नाम धन कीर्ति तब तक है जब तक शरीर है, ये कोई इमोर्टल नहीं है, कोई इटर्नल नहीं है, सब थोड़ी दिन के लिए है। जब व्यक्ति को ये एहसास हो जाए, ये तो सब हम जानते हैं पर तब भी दुखी होते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं है, हमें उनके बारे में सूचनाएं हैं। तो जिस दिन आप और हम ऐसा ज्ञानी बन जाएं, ऐसे चीजों को जान जाएं, जानने से ज्ञानी होता है, फिर ना दुख ना सुख। दुख क्यों होता है? कोई चीज हमसे हट जाए, जो पाना चाहते हैं ना मिले, या मिला हुआ है छीन जाए। सुख कब होता है? जो आप पाना चाहते हैं मिल जाए, और जो मिला, जो हम जिसको पसंद करते हैं हमारे पास रहे। जब आपका कोई पसंद नहीं रहा, नापसंद नहीं रहा, आपको पता है दुनिया ऐसी है, आप कौन है क्या है, फिर ना शोक रहेगा ना दुख रहेगा। इसकी चर्चा आगे फिर हम करेंगे, ये हर्ष और शोक, सुख और दुख का क्या कारण है, पहले भी हमने एक बार चर्चा की थी, तो आज इस बात को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति। अब हम आरती करेंगे।